हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। हरलीन ने कृषा को स्पा जाने के लिए कहा। बाहर जाने के नाम से ही कृषा खुश हो गई थी। युग ने उसे जो पनिशमेंट दी थी, धीरे धीरे अब वो एन्जॉयमेंट में बदल रही थी। युग ने भी हरलीन से कहा था कि वो कृषा को किसी चीज़ के लिए रोक टोक ना करे और वो जहाँ जाना चाहे वहाँ सिक्योरिटी के साथ बिना किसी रोक टोक के जा सकती है। हरलीन ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, एग्जैक्टली आधे घंटे में तैयार होकर नीचे आ जाना, ब्रेकफास्ट करके साथ चलेंगे, देर मत करना, डैडी जी को ये पसंद नहीं है। उन्हें तो मैं भी पसंद नहीं हूँ, कृषा ने नज़रें झुकाकर कहा। अगर पसंद नहीं हो तो कुछ ऐसा करो जिसके बाद वो तुम्हें पसंद करने लग जाए, हरलीन ने कृषा के गाल पर हाथ रखकर कहा और फिर वहाँ से चली गई। हरलीन अपने रूम से बाहर निकल रही थी तभी उसे सामने से हर्षवर्धन राणा आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर हरलीन कहीं और जाने के बजाय उनके पास चली गई। हरलीन के पास आते ही हर्षवर्धन जी ने कहा, अच्छा तो कल रात वो तुम्हारे साथ थी, उसे बोलो यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। ये शराब पीकर तमाशा करना आदित्य सिंघानिया के घर पर होता होगा, राणा मैंशन में नहीं। वो यहाँ आ ही गई है तो तुम उस लड़की को यहाँ रहने के तौर तरीके कब सिखा रही हो? कभी नहीं डैडी जी, हरलीन ने सख्ती से जवाब दिया। उसके ना कहने पर हर्षवर्धन हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। हरलीन के आगे कहा, उसे यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना है, वो अपने हस्बैंड के साथ रहेगी। आप युग को जानते हो कि वो कोई डिसीजन बेवजह नहीं लेता है, बस थोड़े दिन की बात है, फिर युग खुद कृषा को यहाँ से ले जाएगा। हाँ, जब तक वो उन 7 पड़ावों को पार नहीं करता तब तक उसे कुछ कह भी नहीं सकता। एक बार युग को माफिया वर्ल्ड में उसकी पोजिशन मिल जाए उसके बाद इस लड़की को भी उसकी औकात अच्छे से पता चल जाएगी, हर्षवर्धन राणा ने काफी बेरुखी से जवाब दिया और फिर वहाँ से चले गए। उनकी बातों पर गुस्सा होने या चिढ़ने के बजाय हरलीन के चेहरे पर स्माइल थी। उसने धीरे से कहा, सॉरी टू से डैडी जी, आपका ये सपना अधूरा रहने वाला है। आपको क्या लगता है कि युग का काम पूरा होते ही वो कृषा को छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं, वो कृषा से बहुत प्यार करने लगा है, छोड़ना तो दूर की बात है, एक दिन भी उसके लिए एक कृषा चुबिना रहना मुश्किल हो रहा है, तभी पार्टी के बहाने से ही सही वो यहाँ आ रहा है। युग ने हरलीन को मुंबई आने की बात बता दी थी, इसलिए वो कृषा को खासकर स्पा में ले जाना चाहती थी ताकि वो अपना मेकओवर कर सके। हर्षवर्धन जी से बात होने के बाद हरलीन किचन एरिया में गई और ब्रेकफास्ट रेडी होने के बारे में पता लगाया। वो ना केवल ऑफिस के बल्कि घर के कामों को भी काफी अच्छे से देखती थी। राणा मैंशन में खाना सबकी पसंद के हिसाब से बनता था और वो देखना हेड शेफ का काम था, फिर भी हरलीन एक बार क्रॉस चेक करती थी कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद उसने उसे डाइनिंग एरिया में रखवाया और फिर वहां बैठकर सबके आने का इंतजार करने लगी। एक एक करके राणा मैंशन में रहने वाले सारे सदस्य आ गए, बस कृषा का ही आना बाकी थी। राणा मैंशन में रूल था कि डाइनिंग टेबल पर सबके आने के बाद ही खाना शुरू होता था। सब कृषा का वेट कर रहे थे लेकिन मान्या ने इरिटेट होकर कहा, हम पिछले 8 मिनट से उसका वेट कर रहे हैं, पता नहीं वो लड़की आएगी भी या नहीं, मुझे भूख लग रही है, मैं शुरू कर रही हूँ। बोलते हुए उसकी नज़र हर्षवर्धन राणा की तरफ गई जो सर्द निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। मान्या के हाथ वहीं रुक गए। उसने नकली मुस्कुराहट देते हुए कहा, ठीक है थोड़ा वेट और कर लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, वो लड़की बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है। सारा मान्या से बात का जवाब देने जा रही थी लेकिन शब्द ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर दबी आवाज में कहा, चिंता मत करो, उनकी बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है, लेकिन तुम यहाँ कुछ बोली तो तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहता मेरी होने वाली वाइफ की इमेज शादी से पहले ही थोड़ी सी भी खराब हो। टिपिकल हस्बैंड मटेरियल हो तुम शब्द, मेरी इमेज ऑलरेडी इनके सामने खराब ही है, फिर क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा और गलत सोच लेंगे, सारा ने सिर हिलाकर धीमी आवाज में कहा। हरलीन की नजरें इधर उधर थीं। उसने कृषा को टाइम से आने के लिए कहा था लेकिन फिर भी उसने देर कर दी थी। वो उठकर कृषा को बुलाने जा ही रही थी कि कृषा वहाँ आ गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कृषा ने मुस्कुराकर सबको गुड मॉर्निंग विश किया और फिर सारा के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। गुड मॉर्निंग बाद में विश करना, आगे से यहाँ टाइम से नहीं पहुँची हो तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, हर्षवर्धन जी ने बिना किसी भाव के कहा और फिर सब अपनी अपनी प्लेट में खाना सर्व करने लगे। हर्षवर्धन जी की बात सुनकर कृषा का बच्चों की तरह मुंह बन गया। हर्षवर्धन खाना जरूर खा रहे थे लेकिन उनकी नज़रें कृषा पर थीं। वो कृषा के बचपन में उससे 2 से 3 बार मिले थे। कृषा ये भूल चुकी थी लेकिन उन्हें अच्छे से सब याद था। कृषा के बचपन की याद आते ही हर्षवर्धन के चेहरे पर एक पल के लिए स्माइल आई लेकिन फिर अगले ही पल उन्होंने अपने चेहरे के भाव सख्त किए और वापस खाना खाने लगे। कृषा ने उन्हें स्माइल करते हुए देख लिया था। कृषा ने हर्षवर्धन जी की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, दादू आप स्माइल कीजिए ना, स्माइल करते हुए काफी क्यूट लगते हो। लगता है ये लड़की पागल हो गई है जो दिन में सपने देख रही है। इतने सालों में मैंने कभी पापा को स्माइल करते नहीं देखा और इसे पापा के फेस पर स्माइल नजर आ रही है, विराट ने कृषा की तरफ देखकर कहा। कृषा को कोई कुछ कहता था तो ये हर्षवर्धन जी को पसंद नहीं आता था, खासकर विराट और मान्या। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, चुपचाप खाना खाओ, एक दूसरे पर ताने मारना बंद करो। हर्षवर्धन के कहते ही सब चुपचाप खाना खाने लगे। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद कृषा हरलीन और सारा के साथ स्पा के लिए निकल चुकी थी। वहीं दूसरी गाड़ी में बंधन और मान्या भी उस स्पा में पहुंची। वो मुंबई का सबसे बड़ा ब्यूटी ट्रीटमेंट हब था। वहां उन सब ने लगभग 4 घंटे के करीब टाइम बिताया और सबका अच्छे से मेकओवर हो चुका था। हरलीन, कृषा और सारा तीनों एक साथ बाहर निकलीं। सारा ने कृषा को देखकर कहा, चलो तुमने थोड़े ही सही लेकिन अपने हेयर कट तो करवाए। अगर योग यहाँ होता तो इस लुक में तुम्हें देखकर हैरान रह जाता। फिर तो पक्का वो तुम्हारी पनिशमेंट माफ करके सीधे तुम्हें बेडरूम में लेकर जाता। सारा की बात सुनकर कृषा ब्लश कर रही थी। उसने सारा को डांटते हुए कहा, बस भी करो, ख्याली पुलाव मत बनाओ और ना ही मुझे खिलाओ। ना तो वो यहाँ आने वाला है और ना ही कभी मेरी पनिशमेंट माफ करेगा। क्या पता कोई मैजिक हो जाए और युग तुम्हारी पनिशमेंट माफ कर दे। बी पॉजिटिव कृषा, हरलीन ने मुस्कुराकर कहा। तीनों बातें करते हुए बिल पे करने के लिए काउंटर के पास आ रही थी। तभी उन्होंने कुछ लोगों को आपस में बहस करते हुए सुना। वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी। जब वो तीनों सामने गई तो ये देखकर हैरान थे कि बहस करने वाला कोई और नहीं मान्या थी। मान्या ने इरिटेट होकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे सारे कार्ड काम नहीं कर रहे हैं? मैंने आपको नो लिमिट कार्ड्स दिया है, आपकी मशीन ही खराब है जो किसी काम की नहीं है। मान्या पिछले 10 मिनट से पेमेंट करने की कोशिश कर रही थी। इस चक्कर में उसने अपने 4 से 5 कार्ड निकाल लिए लेकिन किसी से भी पेमेंट नहीं हो पा रही थी। सॉरी मैम, आपको कैश ही पे करना होगा। वन मोर थिंग, हमारी मशीन खराब नहीं है, थोड़ी देर पहले ही किसी ने बिल पे किया है। शायद आपके कार्ड्स किसी ने ब्लॉक करवा दिए होंगे, काउंटर पर खड़ी लड़की ने जवाब दिया। मान्या अपने साथ इतना कैश लेकर नहीं आई थी, ये सिचुएशन उसके लिए एम्बैरेसिंग थी। तभी हरलीन उसके पास आई और कहा, इनका बिल मैं पे करती हूँ।
मान्या ने उस वक्त कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके पास हरलीन की हेल्प लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। स्पा से बाहर निकलने के बाद मान्या ने हरलीन से कहा, ये सब तुमने ही किया है ना? पहले मेरे सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए और अब सबके सामने मदद करने का दिखावा कर रही हो। मुझे किसी तरह का दिखावा करने की जरूरत नहीं है मान्या राणा, खुले आम बोलती हूँ, आई डोंट लाइक यू। मैं क्या हमारे घर का कोई भी इंसान तुम्हें पसंद नहीं करता सिवाय तुम्हारे हस्बैंड के। रही बात तुम्हारे कार्ड ब्लॉक होने की, तो लगता है तुमने युग राणा को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है। उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी करोगी, उसे नुकसान पहुंचाओगी और वो तुम्हारे कार्ड्स ब्लॉक करवाने जैसा छोटा सा काम भी नहीं करेगा क्या? मुझे लगा तुम खुद ही समझ जाओगी, लेकिन भूल गई थी कि इस छोटे से दिमाग में पैसों के अलावा और कोई बात आती ही कहाँ है, हरलीन ने काफी सख्ती से जवाब दिया था। इसके बाद मान्या खुद ब खुद समझ गई थी कि ये युग ने ही किया है। वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगी लेकिन कृषा ने बंधन को अपने साथ रोक लिया। स्पा के बाद उन सबका बाहर खाना खाने का और घूमने का प्लान था। प्लान तो मान्या ने भी बनाया था लेकिन कार्ड ब्लॉक होने के चक्कर में मजबूरन मान्या को घर जाना पड़ा। लेकिन कृषा के कहने पर बंधन उसके साथ रुक गई। मान्या के जाने के बाद बंधन ने कृषा की तरफ देखकर धीरे से कहा, मॉम की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ भाभी, उनका नेचर थोड़ा डिफरेंट है, पता नहीं क्यों दूसरों को नुकसान पहुंचाती रहती है। हे, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और तुम्हारी मॉम को भी, तो आगे से किसी और के किए के लिए सॉरी मांगने की जरूरत नहीं है, कृषा ने प्यार से जवाब दिया और फिर बंधन को हल्के से हग किया ताकि उसे अच्छा महसूस हो। उसके बाद वो चारों अम्यूजमेंट पार्क में गए। वहाँ उन्होंने काफी मस्ती की और अच्छे होटल में खाना खाने के बाद वापस राणा मेंशन जाने लगे। गाड़ी के अंदर बैठने से पहले हरलीन ने कहा, ड्राइवर तुम तीनों को घर छोड़ देगा, मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा। कृषा तुम मान्या से दूर रहोगी, सारा प्लीज कृषा के साथ ही रहना। हरलीन ने उन्हें जाने से पहले सब समझा दिया और फिर वहाँ से कैब लेकर वो युग के विला वे पहुँची। वो वहाँ पहुँची तब तक शाम के लगभग 7:30 बज रहे थे। वहाँ पर इतनी टाइट सिक्योरिटी देखकर हरलीन समझ गई थी कि युग आ गया है। किसी ने भी उसे अंदर जाने से नहीं रोका। हरलीन सेकंड एंट्रेंस पार करके लिविंग रूम में पहुँची। युग वहाँ पर मलिक के साथ ही था और उसका चेहरा दूसरी तरफ था। हरलीन ने अंदर आते हुए तेज आवाज में कहा, तुम राणा मेंशन भी आ सकते थे, यहाँ इस तरह अपने घर में आने का क्या मतलब हुआ? हरलीन की आवाज़ सुनकर युग उनकी तरफ पलटा और उनके पास जाकर उन्हें हग किया। फिर उसने हरलीन से अलग होकर भौहें उठाकर कहा, शायद आप भूल रही हैं बुआ, मैंने उसे पनिशमेंट दी है और इस पनिशमेंट के चलते मैं उससे नहीं मिलूंगा। तुम बेवजह जिद कर रहे हो, अगर उसे पता चला तुम यहाँ पर हो और उससे नहीं मिले तो उसे बुरा लगेगा। हरलीन ने सिर हिलाकर कहा, वो पिछले 2 दिनों से कृषा के साथ थी और अच्छे से जानती थी। इस बीच कृषा ने हर पल युग को मिस किया था। यही तो मैं चाहता हूँ बुआ, उसे बुरा लगे, उसे बुरा लगे और वो मेरे लिए तड़पे, ताकि उसे समझ आए कि युग राणा के डिसीजन के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। युग ने कोल्ड वॉइस में जवाब दिया। हालांकि कृषा को वो भी मिस कर रहा था, पर अपने इमोशन से ज्यादा उसके लिए अपनी जिद मायने रखती थी। हरलीन ने आगे कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि युग को कुछ कहने का फायदा भी नहीं, क्योंकि वो नहीं सुनने वाला है। वहीं आदित्य सिंघानिया के मेंशन में होने वाली ग्रैंड पार्टी का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था।